अध्याय 7 वाराणसी जाने के लिए मैंने दिल्ली जा रही एक रेलगाड़ी पकड़ी। मैं खिड़की से दूर तक फैले भारत के खुले मैदानों को निहार रहा था। कुछ खेत सूखे थे तो कुछ फसलों से लहलहा रहे थे और कुछ बैलों की जोड़ियों द्वारा जोते जा रहे थे। खेतों का दृश्य धीरे धीरे गांवों में बदल गया, फिर शहरों में, और फिर डीजल के धुएं की गंध और स्वाद के साथ साथ हमने नई दिल्ली में प्रवेश किया। हॉर्न गरज रहे थे, ट्रक के इंजन शोर कर रहे थे और लोगों ने चारों ओर भीड़ लगाई हुई थी। फेरी वाले चिल्ला रहे थे, बच्चे हुड़दंग मचा रहे थे और व्यापारी लेन देन में व्यस्त थे। हिमालय के वन अब बहुत पीछे छूट चुके थे और उनके स्थान पर अब लाखों लोगों से भरा एक प्रदूषित महानगर था। कैनॉट सर्कल के फव्वारों के निकट घूमते हुए मुझे एक चीख सुनाई दी, मंक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक क्षण उपरांत सुनहरे बालों वाले एक यात्री ने भागकर मेरा हाथ थाम लिया। वो शॉन था, मेरा एक सहयात्री मित्र जो अपने बैग पर कनाडा का झंडा चिपकाकर घूमता था। हम लोग लंदन में पिकैडली सर्कस में पहली बार मिले थे। भले ही उससे मिलकर मैं प्रसन्न हुआ, तथापि मैं अभी एक अलग ही दुनिया से यहाँ आया था तथा आने वाली घटनाओं के लिए तैयार नहीं था। आपसी वार्तालाप करते हुए शॉन की भाषा, हाव-भाव तथा रुचियाँ एकदम अपरिष्कृत और नीरस प्रतीत हो रही थी। क्या हो रहा था? मैं नम्रता से सुनता था और वो हमारे परिचित लोगों के विषय के बारे में गपशप करता रहा। फिर उसने विश्व राजनीति के प्रति अपने विचार बताए। वे स्थान जहाँ पर वो नशे में धुत हो गया, अपने बार बार हो रहे दस्त और यहाँ तक कि वो अपने मल के रंगरूप आदि की सटीक जानकारी भी दी। मेरा मन किया कि वहाँ से भाग जाऊँ। कुछ महीनों पहले तक मुझे उसका संग भाता था, किंतु आज वो इतना अलग क्यों लग रहा है? क्या वो बदल गया है? मैंने गहरी सांस ली और अचानक मुझे समझ में आया कि वो नहीं, वास्तव में मैं बदल गया था। एक पुराने मित्र से हुई इस भेंट से पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बदल चुका था। शॉन के साथ बैठे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं पूरी तरह से एक नई व्यक्ति में परिवर्तित हो गया हूँ। एक क्षण के लिए मैं सहर गया। मुझे चक्कर आने लगे और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं समझ गया कि अब दुनिया के साथ व्यवहार करते हुए मुझे और अधिक संतुलन रखना होगा, क्योंकि ये दुनिया जो पहले मुझसे इतनी परिचित थी अब मेरे लिए पराई बन चुकी थी। इधर शॉन बड़बड़ किए जा रहा था और उधर मैं अपने अंतर्मन में झांक रहा था। मैंने पाया कि कैसे हमारे द्वारा चुनी संगति और परिवेश हमारे चरित्र और जीवन की विचारधारा को बदल देते हैं। समीप ही एक विशाल फव्वारा जल की धारा को हवा में निरंतर उछाल रहा था। चरमोत्कर्ष तक पहुंचकर जल की प्रत्येक बूंद नीचे आकर तालाब में छप छप गिर रही थी। उसे देखकर मैं प्रार्थना करने लगा कि मैं दूसरों का गलत मूल्यांकन करने के जाल में न गिरूं। सामाजिक जीवन शैली से हटकर चलने का कारण अनेक बार लोगों ने मेरे प्रति गलत धारणाएं बनाकर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करूं। फिर भी आलोचना करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल थी। भले ही अभी मैं शॉन के विचारों अथवा जीवन शैली से सहमत नहीं था, फिर भी परमपिता से उत्पन्न हुई एक आत्मा के रूप में क्यों नहीं मैं उसका आदर करूं और साथ ही अपने उस मार्ग पर भी चलता भी रहूं जिसे मैं अभी पवित्र मानता हूं। ऐसे अनेक विचारों का सैलाब मेरे मन में वार्तालाप के दौरान उमड़ता घुमड़ता रहा। कुछ समय पश्चात शॉन ने मुझे भोजन के लिए न्योता दिया। मैंने नम्रता से अस्वीकार कर दिया। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मंक, उसने उत्सुकतापूर्वक हाथ मिलाते हुए कहा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला, शॉन। उस दिन के पश्चात मैं जब भी नई दिल्ली से गुजरा तो कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के पास साधुओं के साथ रहा। वाराणसी के ओर जाते हुए मेरी ट्रेन ताजमहल की नगरी आगरा में रुकी। तीसरी श्रेणी में यात्रा करने का ये लाभ है कि व्यक्ति मनचाहे स्थान पर उतरकर फिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रही किसी अन्य ट्रेन पर चढ़ सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आगरा में रुके और 17वीं शताब्दी में बने विश्व के महान आश्चर्यों में से ताजमहल को न देखें? विशाल बाह्य दरवाजों से प्रवेश कर मैंने सरू के पेड़ों से घिरे पानी के एक लंबे तालाब को देखा। दोनों ओर गुलाब के फूलों से भरे बगीचे थे। सामने नीले आकाश और यमुना नदी की पृष्ठभूमि लिए ताजमहल खड़ा था। निकट आकर मैं हस्तशिल्पित सफ़ेद संगमरमर की कलाकृतियों को सराहने लगा, जिन पर एक समय अंदर और बाहर मूल्यवान रत्न जड़े थे। बगीचे में आराम करते हुए मैं ताज के इतिहास पर एक पुस्तक पढ़ी और जाना कि एक मुगल बादशाह ने अपनी प्रिय रानी के मृत्यु के पश्चात उस स्मारक का निर्माण करवाया था और ये उसकी कब्र थी। 20,000 मजदूरों और कारागिरों के 22 वर्षों के कड़े परिश्रम के पश्चात 1648 में इस स्मारक का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। लोक कथाओं के अनुसार प्रमुख शिल्पियों के हाथों को काट दिया गया था जिससे वे पुनः इसकी नकल न बना सकें। आगे चलकर राजा के एक पुत्र ने राज्य हड़प लिया, अपने भाइयों को या तो मार दिया या उन्हें देश निकाल दे दिया और अपने पिता को जेल में डाल दिया। पुस्तक से सिर उठाकर मैं इस प्रसंग को समझने का प्रयास करने लगा। भव्य महलों, किलों, मस्जिदों और ताजमहल का निर्माण करने वाले इस राजा को उसके ही लड़के द्वारा बंदी बना लिया गया। जेल के भीतर वो अनेक यातनाएं सह रहा था, जबकि बाहर उसके परिजन एक दूसरे को मार काट रहे थे। सत्ता के लोभ का ये कितना दयनीय परिणाम था। जिस हृदय में स्वार्थ और लोभ की खरपतवार पनपती है, वहां प्रेम का पुष्प जीवित नहीं रह सकता। वस्तुतः स्वयं की ईर्ष्या, काम और लोभ पर विजय प्राप्त करना ही सच्चा स्मारक है। मैंने प्राचीन नगरी वाराणसी की अपनी यात्रा जारी रखी, जिसे अंग्रेजों ने बनारस नाम दिया था। भारत के पवित्र ग्रंथों में काशी का नाम महिमा मंडित है और करोड़ों हिंदुओं द्वारा सर्वाधिक पवित्र मानी जाने वाली ये नगरी विशेष रूप से भगवान शिव के उपासकों को अत्यंत प्रिय है। मैं घूमते हुए गंगा के घाट पर पहुंच गया। सूर्योदय हो रहा था। दोनों तटों पर जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक पत्थर के प्राचीन घाट बने थे। हजारों नागरिक एवं तीर्थयात्री स्नान करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। धूप अगरबत्ती के सुगंधित धुएं के बादल स्वर्ग की ओर उड़ रहे थे। करतालें झंकार कर रही थी, घंटे गूंज रहे थे, बिगुल नाद कर रहे थे, नगाड़े ताल में बज रहे थे, बांसुरियों की सुरीली ध्वनि प्रसारित हो रही थी और वीणा एवं तंबूरों से शास्त्रीय रागों का गुंजन सुनाई पड़ा रहा था। सभी दिशाओं में लोक की स्तोत्र और मंत्रोच्चारण कर रहे थे, जो एक दूसरे में विलीन हो भगवान को अर्पित हो रहे थे। गंगा मैया की आराधना के लिए श्रद्धालु रंग बिरंगे वस्त्र, पगड़ियां, साड़ियां इत्यादि पहनकर आए थे। सीढ़ियों पर चटकीले लाल, पीले, हरे, नारंगी और नीले रंग के पाउडर की ढेरियां लगाए दुकानदार सूर्य की धूप से बचने के लिए अनेक विशाल छतरियों के नीचे बैठे थे। भक्तगण धूप, दीप, शंख, वस्त्र, रत्न और पंखे अर्पित कर रहे थे। एक ओर आराधक जमघट लगा गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे थे और रीति रिवाजों के अनुसार अनेक वस्तुएं अर्पित कर रहे थे, तो दूसरी ओर स्त्री पुरुष, बच्चे, गाय, भैंस, बकरियां, बंदर और हाथी वहीं स्नान कर रहे थे। खुले हाथों से प्रसाद वितरित हो रहा था। चारों ओर ठेलों पर खाने की चीजें तथा धार्मिक वस्तुएं बेची जा रही थी। धार्मिक आस्था का ये एक विशाल उत्सव था। भीड़ के संक्रामक उत्साह में सम्मिलित होकर मैंने भी अपना प्रातःकालीन स्नान किया। तत्पश्चात मैं वाराणसी के बीच में स्थित प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर गया। शास्त्रों के अनुसार एक समय शिवजी और पार्वती जी ने यहाँ निवास किया था। अनादिकाल से साधुजन, राजागण और सामान्य लोग इस मंदिर में तीर्थाटन के लिए आते रहे हैं। इससे एक मुगल सम्राट इतना उत्तेजित हो गया कि उसने इस मंदिर का विध्वंस करके इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। किंतु उस समय हिंदुओं ने शिवजी के विग्रह को छिपा लिया था और एक नए मंदिर में पुनः उसकी स्थापना कर दी। अब फिर से हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ पूजा के लिए आते हैं। एक दिन वाराणसी में भ्रमण करते हुए मुझे एक स्त्री का क्रंदन सुनाई पड़ा। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। संकरी गलियों से होती एक शवयात्रा नदी की ओर जा रही थी। फूलों से सजा शव बांस के एक डोले पर रखा था, जिसे मृतक के प्रियजनों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। पीछे चलते पुरुष धीरता से अपनी भावनाओं को संयमित किए हुए थे और उनके पीछे चलती स्त्रियां अनियंत्रित होकर विलाप कर रही थीं। उनकी पीड़ा देख मैं द्रवित हो उठा। मैं उनके पीछे चलने लगा और अंतिम संस्कार देखने के लिए शमशान घाट तक पहुंच गया। पश्चिम में देखे गए किसी भी संस्कार से ये पूर्णतः भिन्न था। उन जलती चिताओं को देखकर मैं मृत्यु के रहस्य पर चिंतन करने लगा, एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए दार्शनिक सदियों से जूझ रहे हैं। गहन अंतर्ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए मैंने एक निर्णय किया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं मणिकर्णिका शमशान घाट पर मृत्यु के अटल सत्य पर चिंतन करूंगा। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा के निकट वाराणसी में प्राण त्यागना अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि कहा जाता है कि शिवजी स्वयं आकर मरणासन्न व्यक्ति के कान में भगवान श्रीराम का नाम उच्चारित करते हैं। इससे वो आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसलिए अनेक तीर्थयात्री मृत्यु के समय वाराणसी आते हैं। ऐसे स्थान पर बैठकर जहां से जलती चिताएं स्पष्ट दिखती थीं, मैंने मृतक के परिजनों और मित्रों को ध्यान से देखा, जो मृत्यु की सच्चाई को अपने सन्मुख देखने के लिए बाध्य थे। गलियों में रामनाथ के कीर्तन और विलाप भरी यात्रा के पश्चात शव को लकड़ियों की चिता पर रखा जाता और फिर प्रार्थनाओं, मंत्रोच्चारण तथा धार्मिक ग्रंथों के पठन के साथ उस पर पवित्र वस्तुएं चढ़ाई जाती। अंतिम क्रियाएं पूर्ण करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र अथवा निकटतम संबंधी गंगाजल छिड़कते हुए शव की परिक्रमा करने के पश्चात एक जलती लकड़ी से चिता को मुखाग्नि देता। शव का दहन आत्मा की बंधन मुक्ति का सूचक है और अग्नि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करती है। अग्नि अपना कार्य प्रारंभ करती, उसकी लपेटें ऊंची उठने लगती और काला धुआं स्वर्ग की ओर उड़ने लगता। उस समय अनेक शोकग्रस्त परिजन अपनी अंतिम प्रार्थना अर्पित कर नदी में स्नान करने के लिए चल देते। मैं जलते शव को अंतिम क्षणों तक देखने के लिए रुक जाता। सबसे पहले शव के बाल चिरमिराकर शून्य में विलीन होते, मांस सिकुड़ जाता, अंग पिघल जाते और हड्डियां भुरभुरा जाती। धीरे धीरे लपेटें सारे शरीर का भक्षण कर लेती। अंत में राख के ढेर के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता और उस राख को सावधानी से गंगा मैया की लहरों में प्रवाहित कर दिया जाता, जो अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। इस प्रकार होता है एक व्यक्ति के जीवन का भव्य समापन। इन सब के पार्श्व में गंगा मैया का वो मधुर गीत था जो हमें शाश्वत सच्चाई की ओर वापस लौटने के लिए पुकार रहा था। कभी कभी उसके गीतों में हरे कृष्ण मंत्र उठ आता था, जिसमें मृत्यु पर मनन करते हुए गाने लगता। समय के साथ देह या तो अग्नि में या फिर धरती में स्थान प्राप्त करेगी ही। यदि देह ही वो वस्तु है जिससे मित्रगण और परिजन प्रेम करते हैं, फिर क्यों वे उसे नष्ट कर देते हैं? वो शरीर नहीं है जिससे लोग प्रेम करते हैं, वो आत्मा है। शरीर एक अस्थायी वाहन है। आत्मा के बिना शरीर एक चालक विहीन वाहन के समान है। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, जीभ से चखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, त्वचा से अनुभव करता हूँ, मस्तिष्क से सोचता हूँ और हृदय से प्रेम करता हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ? कौन है वो साक्षी, सुखों का आनंद लेने वाला और दुखों की वेदना भोगने वाला, जो मेरे शरीर में चेतना का संचार करता है? एक के बाद एक शव को पवित्र नदी में ले जाने की तैयारी करते देख मैं इन प्रश्नों पर मनन करने लगा। जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, विद्या, धन अथवा धर्म की परवाह न करते हुए कुछ समय पश्चात सभी शरीर काल की नदी द्वारा बहा लिए जाएंगे, वो नदी जो किसी का भेदभाव नहीं करती। नदियों के तट अथवा पेड़ों के नीचे सोना और कुछ सस्ता भोजन भिक्षा मांग कर खाना, मैंने जीवन यापन की इस शैली को चुना था। दस्त की एकाध घटनाओं को छोड़कर मेरा स्वास्थ्य ठीक था। ऋषिकेश में मिले कपड़ों को मैं अभी तक पहन रहा था, किंतु अब वे बदरंग और जर्जर हो चले थे। मेरे बाल लंबे हो गए थे। जंगलों, खेतों, गांवों और शहरों में नंगे पैर चलने से मेरे पैर कठोर होकर कट फट गए थे। मेरे पास केवल लकड़ी का एक भिक्षा पात्र, एक लाठी, पुस्तकों से भरा कपड़े का एक थैला और अपनी अंतिम बची धनराशि से खरीदा एक धार्मिक चित्र था। किंतु मेरा हृदय उल्लास से भरा था, क्योंकि मुझे उस लक्ष्य के प्रति गहरा विश्वास था जिसकी प्राप्ति के लिए मैं अग्रसर था। मेरे लिए जीवन एक विद्यालय था और मैं उसमें शिक्षा ग्रहण करता एक जिज्ञासु विद्यार्थी। कुछ था मेरे अंदर जो मुझे और अधिक देखने के एवं सीखने के लिए धकेल रहा था। कुछ था मेरे अंदर जो मुझे टिकने नहीं दे रहा था और एक स्थान से दूसरे स्थान और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने के लिए उकसा रहा था। क्या था या कौन था वो? मुझे विश्वास था कि वे भगवान थे, एक ऐसे व्यक्ति जो जीवन भर सदा मेरे साथ रहे। बचपन में मैंने जिनसे प्रार्थनाएं की, किशोरावस्था में जिन्हें निर्लज्जता से बार बार धोखा दिया और अब जिन्हें जानने और प्रेम करने के लिए मैं लालायित था। वाराणसी में मैंने शिवजी के एक अन्य पवित्र स्थल पशुपतिनाथ के विषय में सुना। कहा जाता है कि एक विशेष रात्रि वहां भक्तों की प्रार्थनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस आश्वासन और यात्रा के रोमांच ने मुझे उत्तेजित कर दिया। मैंने उत्तर पूर्व दिशा में कभी रेल से और कभी ट्रकों में बैठकर यात्रा करके लगभग 250 मील का रास्ता तय किया और नेपाल में स्थित काठमांडू पहुंचा, जहां हजारों भक्त पशुपतिनाथ मंदिर में जमा हुए थे। विदेशी होने के कारण मुझे वहां प्रवेश नहीं दिया गया, किंतु मैं इतनी दूर से आया था कि उस रात्रि पूजा करने हेतु कृतसंकल्प था। मैं उस आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना चाहता था जिससे मुझे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो और अपना मार्ग मिल जाए। भारी खतरा उठाते हुए मैंने अपनी देह पर पवित्र यज्ञ की भस्म पोतकर मंदिर में प्रवेश किया। वो एक ऐसी गहन अनुभूति थी जिसने मुझे अपनी मान्यताओं और अपनाई गई जीवन शैली के संबंध में विवेकपूर्ण ढंग से विचार करने के लिए प्रेरित किया। अगले ही दिन मैं भारत लौटने के लिए चल पड़ा। मैं पशुपतिनाथ से लगभग 200 मील दक्षिण में स्थित बिहार प्रदेश के बोधगया नामक स्थान पर पहुंचा, जो बौद्धों के लिए पृथ्वी पर सर्वाधिक पूजनीय तीर्थस्थल है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ महलों के राजसी ठाट बाट को त्याग कर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और व्याधियों से मुक्ति का मार्ग ढूंढने हेतु निकले थे। वो 6 वर्षों तक एक तपस्वी के रूप में रहे और मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वेच्छा से भूख की पीड़ा, मौसम के थपेड़ों और अन्य कष्टों को सहन किया। उस मार्ग की कमियों को समझते हुए वे अंततः गया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन में तब तक बैठे रहने का व्रत लिया जब तक उन्हें दिव्य ज्ञान के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। जिस प्रकार शैतान ने ईसा मसीहा को वन में प्रलोभन दिखाए थे, माया ने भी सिद्धार्थ को हर संभव सुख का प्रलोभन दिया, परंतु वे अपनी व्रत में अड़िग रहे। बोधगया में उस पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे वे बुद्ध बन गए, ज्ञान से प्रबोधित। तब से उस वृक्ष की पूजा बोधि वृक्ष अर्थात ज्ञान के वृक्ष के रूप में की जाती है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मैं प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित ग्रंथों का अध्ययन करता और ध्यान लगाता। ध्यान करते समय मुझे ऐसा लगा मानो एक ओजस्वी शक्ति मुझे मेरे शरीर और मन से बाहर निकालकर अंतरिक्ष में ले जा रही थी। 1960 के दशक से डीटी सुजुकी और एलन वॉट्स जैसे लेखक पश्चिम में जैन बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाते आ रहे थे। मैंने उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ी थी और मुझे उनकी सरल शैली तथा स्पष्टवादिता बहुत पसंद आई। जब मुझे पता चला कि जापान से आए एक जैन गुरु बोधगया में जैन शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके व्याख्यान सुनने के लिए मैं आतुर हो उठा। लगभग 15 शिष्य, जिनमें आधे भारतीय थे और आधे विदेशी, ध्यान कक्ष में बैठे उत्सुकता से गुरुजी के पहले दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक घंटी बजी और आदरणीय जापानी गुरुजी ने प्रवेश किया। उनका सिर घुटा था और उन्होंने लहराता हुआ लंबा काला चोगा पहना था। अपने हाथ में बेंत की छड़ी लिए वे धीरे से धरती पर बैठ गए। सूर्य की एक किरण उनकी असाधारण मुखाकृति को प्रकाशित कर रही थी। उन्होंने हमें संबोधित करना आरंभ किया। मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, मैं तुम्हें लंबी परंपरा से चली आ रही जैन की मूल शिक्षाएं दूंगा। उनकी लयबद्ध शैली से एक सम्मोहक प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। सभी कष्टों का कारण कामनाएं हैं, उन्होंने कहना आरंभ किया, और कामनाओं की उत्पत्ति का कारण हमारे मन की इंद्रियों के प्रति आसक्ति है। मन को सभी विचारों से रिक्त करना ही मुक्ति है। मन और विचारों का न होना साटोरी है, अर्थात मुक्तावस्था। एकाग्रता के साथ आंखें मूंद कर उन्होंने बताया कि तार्किक विचारों और शब्दों से ध्यान बटाए बिना प्रत्यक्ष रूप से जीवन के अर्थ को समझना ही जैन है। आप बुद्ध हैं, उन्होंने कहा, लेकिन इसकी खोज आपको स्वयं करनी है। प्रत्येक जीव बुद्ध है, जैसे बर्फ मूलतः जल ही है। महान डीटी सुजुकी ने लिखा है कि जैन की साधना का अर्थ एक ऐसा जीवन है जो नम्रता, परिश्रम, सेवा, प्रार्थना, कृतज्ञता और ध्यान साधना से भरा है। फिर उन्होंने अपने नियमों का वर्णन किया। मैं बहुत कठोर हूं और तुम्हें मेरे प्रत्येक शब्द का पालन करते हुए सदैव मौन धारण करना होगा, ठीक है? सभी ने सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें बिल्कुल भी इंद्रिय भोग नहीं करना है। मैथुन नहीं, नशा नहीं, खेल नहीं और संगीत नहीं। जब मैं तुम्हें खाना दूंगा तभी तुम खाओगे, और जो भी मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें वही खाना होगा। नए शिष्यों ने खलबली मच गई और वरिष्ठ उन्हें सांत्वना देने लगे। गुरुजी ने आगे कहा, मैं तुम्हें कौन सिखाऊंगा जो विरोधाभासी पहेलियां हैं? इससे तुम तर्कसंगत विचारों से मुक्त हो जाओगे। फिर मैं तुम्हें किन्हीं सिखाऊंगा जो चलकर करने वाली ध्यान क्रिया है, और जयजन सिखाऊंगा जो बैठकर करने वाली ध्यान क्रिया है। प्रतिदिन सामूहिक ध्यान अथवा जयजन के 3 सत्र होंगे जो 1-2 घंटा चलेंगे। तुम्हें बिना हिले डुले बैठे रहना होगा और थोड़ी सी भी हलचल का सुधार मेरी छड़ी की मार से होगा। फिर उन्होंने हाथों को अपनी गोद में रखा और हमें मन को खाली करने के लिए ध्यान की एक विधि सिखाई। हमें केवल उस रेखा पर ध्यान करना था जहां दीवार और फर्श मिलते थे। जब मैं पहली घंटी बजाऊंगा तो आप आरंभ करेंगे और केवल तभी समाप्त करेंगे जब दूसरी घंटी बजेगी। पहले सायंकालीन सत्र में मेरा कंधा दुखने लगा, इसलिए मैंने उसे थोड़ा हिलाया। तड़ाक, बैंक की छड़ी मेरे कंधे पर पड़ी। मैं दोबारा नहीं हिला। जो भी हिला उसे छड़ी की मार से सीधा किया गया। दुखते अंगों और रक्त चूसते मच्छरों के कारण हमारे शरीर पर बार बार लकड़ी की मार पड़ रही थी। अंततः गुरुजी की घंटी बजी और हमारी छुट्टी हुई। सभी शिष्यों ने सिर मुंडाने की सीमा तक समर्पण कर दिया, सबने केवल मुझे छोड़कर। मेरे अंदर दूसरों की भांति जीवन समर्पित करने का साहस नहीं था। मेरे भीतर ऐसा करने के लिए न तो पक्का विश्वास था और न ही दृढ़ता। जब 14 दिवसीय सत्र समाप्त हुआ तो मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया और चल पड़ा। मुझे लगा कि उनके द्वारा अपेक्षित अनुशासनबद्ध जीवन शैली और उनके द्वारा सिखाया निरंतर ध्यान एक अच्छा अनुभव था, लेकिन उस अनुभव में कुछ ऐसा था जिसने मुझे संदेहास्पद बना दिया, किंतु मैं उसे कुछ नाम नहीं दे पाया। कुछ दिनों पश्चात बोधि वृक्ष के नीचे जब मैं अपने ध्यान से बाहर आया ही था कि मुझे एक अमेरिकी दंपत्ति मिले जो गुरुजी के निष्ठावान शिष्य थे। जब मैंने उनका हालचाल पूछा तो वो महिला रोने लगी। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारे आश्रम से जाने के पश्चात क्या हुआ, उसने कहा। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं संभल गया। गहरी सांस लेकर वो मेरे निकट बैठ गई और पूरी कहानी सुनाने लगी। एक देर रात जोनाथन लघुशंका निवारण हेतु बाहर शौचालय में गया। वहां पर उसने जो देखा वह बहुत ही अजीब था। आंखें मलते हुए उसने स्वयं को संभाला। तुम्हें याद है पैम, गुरुजी की एक अमरीकी शिष्या? मैंने सिर हिलाया। वो गुरुजी के कमरे में जा रही थी। कुछ घंटों बाद वो घबराई हुई बाहर आई। अगली कुछ रातें जोनाथन ने केले के बगीचे में छुपकर निगरानी की रखी। ये प्रसंग फिर से हुआ। जब उसने हमें यह समाचार सुनाया तो हमने सोचा कि उस लड़की से पूछताछ करनी चाहिए। पैम ने सच का स्वीकार किया। गुरुजी का हर रात उसके साथ अनैतिक प्रेम संबंध चल रहा था। वो महिला रुमाल से मुंह ढककर रोने लगी और फिर मेरी ओर देखकर बोली, हमें धोखा दिया गया है। मेरा मन बैठ गया। उस महिला ने बोलना जारी रखा और बताया कि कैसे उन्होंने गुरुजी की सच्चाई का पता लगाने के लिए चुपके से उनके चाय में LSD मिला दी। नशे के प्रभाव में गुरु ने अपनी असलियत उजागर कर दी। उत्तेजित हो वो बोली, तुम्हें उसे सुनना चाहिए था रिचर्ड। वो बेकाबू हो गया और अपनी डींगे हांकने लगा। तब गुरु की नकल करते हुए उस महिला ने अपनी आवाज भारी की और अपनी अंगुली मेरे चेहरे के आगे हिलाकर बोली, तुम्हें केवल मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं सिद्ध पुरुष हूं, बाकी सब ढोंगी हैं। अगर तुम मेरे शब्दों और कार्यों पर प्रश्न उठाओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अंत में उसने बताया कि सभी शिष्यों ने उसे छोड़ दिया। मेरा हृदय पीड़ित हो उठा और मैं अपने एक गुरु के विषय में ऐसा समाचार सुनकर शोकमग्न हो गया। जब मेरे अमेरिकी मित्र चले गए तो मैंने इस प्रसंग से कुछ सार ढूंढने का प्रयत्न किया। जैन मास्टर शिष्यों के साथ बहुत कठोर था, परंतु स्वयं के साथ नहीं। उसने सच्चे गुरुओं की एक लंबी परंपरा का गलत प्रतिनिधित्व किया था। दुर्भाग्यवश ऐसा पाखंड जगत के महान धार्मिक सिद्धांतों की छवि पर कलंक लगा देता है। एक गैर जिम्मेदार पथप्रदर्शक अपने अनुयायियों के हृदय और श्रद्धा को तोड़ सकता है और ऐसे लोगों के प्रति संदेह उत्पन्न कर सकता है जो वास्तव में सच्चे हैं। इस मिथ्याचार ने उसके अनुयायियों को कितनी पीड़ा पहुंचाई और देखो स्वयं उसके जीवन का क्या हश्र हुआ। कितना आवश्यक है अपने आदर्शों के अनुसार जीवन यापन करना, कितना अनिवार्य है कथनी और करनी को एक समान बनाना। बोधगया के मनोरम क्षेत्र में अनेक मंदिर हैं जो एशिया के विभिन्न बौद्ध राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं घूमते घामते इन मंदिरों को देखने जाता। बर्मी मंदिर के शांत परिवेश में मेरी भेंट सत्यनारायण गोयंका से हुई। लगभग एक वर्ष पूर्व ये बर्मा से ध्यान की एक प्राचीन तकनीक लेकर आए थे और अब उसे यहाँ के लोगों को सिखा रहे थे। उन्होंने मुझे भी एक 10 दिवसीय सत्र में भाग लेने के लिए कहा जो अगले दिन से प्रारंभ हो रहा था। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर मैं भी 10-15 अन्य लोगों के साथ उनका विद्यार्थी बन गया। गोयंका जी जैसा कि हम उन्हें बुलाते थे, हम सबके लिए एक स्नेही पिता के समान बन गए थे। उनके सफ़ेद बालों में एक और मांग निकली थी और उनकी दाढ़ी मूछ रहित चेहरे से शांति टपकती थी। वे एक नीली चेकधारी लुंगी और सफ़ेद रंग की कमीज पहनते थे। पालथी मारकर बैठे गोयंका जी ने हम लोगों को अपने जीवन की कथा सुनाई। 1924 में उनका जन्म एक भारतीय परिवार में हुआ था जो बाद में व्यापार हेतु बर्मा में जा बसा था। भले ही उन्होंने अतुल्य धन और यश कमा लिया था, फिर भी माइग्रेन के दर्द और मानसिक तनाव के कारण वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने हमें बताया, 1955 में मैं अपने पूजनीय गुरु सेयाम्बू उबाखिन से मिला। उस भेंट ने मेरा जीवन बदल दिया और मैंने अगले 14 वर्ष तक उनसे शिक्षा प्राप्त की। वे एक ऐसी परंपरा से संबंधित थे जिसकी जड़ें बुद्ध तक पहुँचती है। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कभी भी एक सांप्रदायिक पंथ की शिक्षा नहीं दी, अपितु उन्होंने धम्म अथवा धर्म का ज्ञान दिया जो मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने हमें विपाशना सिखाई जिसका अर्थ है वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। भारत की ध्यान मार्ग की सर्वाधिक प्राचीनतम तकनीकों से ये एक है। 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध द्वारा इसकी पुनः खोज की गई थी और उन्होंने इसकी शिक्षा सभी समस्याओं के लिए सर्वोपयोगी समाधान के रूप में दी थी। गोयंका जी अत्यंत कृतज्ञता के साथ अपने गुरु के विषय में बोलते थे। भले ही उबाखिन एक गृहस्थ थे, सन्यासी नहीं, वे विपाशना की साधना में शिक्षा में पारंगत थे। एक महान सपने को साकार करने के लिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया ताकि मैं विपाशना को उसकी उत्पत्ति के राष्ट्र भारत में पुनः ला सकूं। गोयंका जी में मैंने एक ईमानदार एवं नैतिक व्यक्ति पाया। उन पर विश्वास करना सहज था। उनकी शिक्षाएं सरल एवं स्पष्ट थीं। दिन में 3 बार हम सामूहिक ध्यान साधना करते और संध्या समय गोयंका जी व्याख्यान देते थे। इस ध्यान साधना से, उन्होंने कहा, आप जीवन को भीतर और बाहर से देख पाएंगे, निष्पक्षता से उसके साक्षी बनेंगे और सुख दुख हार जीत आनंद पीड़ा की धारणाओं से विरक्त हो जाएंगे। इस प्रकार आपका मन धीरे धीरे और गहरी शांति प्राप्त करेगा और शांति से करुणा जागृत होगी। हर दिन दोपहर के समय गोयंका जी से मेरी व्यक्तिगत चर्चा होती थी और इस प्रकार हम एक दूसरे के बहुत निकट आ गए थे। गहरे सरोकार के साथ वे हर विद्यार्थी की सहायता करते और बदले में कुछ नहीं मांगते। उनका प्रबल व्यक्तित्व और दृढ़ विश्वास उनके अनुयायियों के छोटे से समूह को संरक्षण प्रदान करता। 10 दिवसीय सत्र की समाप्ति के पश्चात उन्होंने मुझे बम्बई में होने वाले उनकी आगामी सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उन्हें वहां मिलने के लिए हामी भर दी। तत्पश्चात मैंने अनेक दिनों तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक बोधि वृक्ष के नीचे विपाशना का अभ्यास किया और मंदिर में स्थित बुद्धि की सुनहरी मूर्ति से आशीर्वाद की याचना की। बोधगया से मैंने उत्तर पूर्व स्थित सारनाथ की यात्रा की। यहाँ पर एक मृग उद्यान में भगवान बुद्ध ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया था। वहां मैंने बोधिसत्व व्रत का अध्ययन किया, जिसमें व्यक्ति बुद्ध के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए इस जगत की माया में पीड़ित लोगों के प्रति करुणावश अपने जीवन को समर्पित कर देता है। इस सद्गुण पर विचार करते हुए मैंने कलकत्ता जाकर एक ऐसी निर्मल आत्मा का आशीर्वाद लेने का निर्णय किया, जिनके विषय में मैंने बहुत सुना था। वे थीं मदर टेरेसा। मैं रेल से पूरब की ओर यात्रा कर कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पर उतरा। प्रातः समय भीड़ से गुजरते हुए मैं गंगा स्थित काली घाट पहुंचा। वहां काली देवी का मंदिर है। काली देवी शिवजी की करुणामयी शक्ति की एक स्वरूप हैं और बुराई का नाश करती हैं। गली में भारी भीड़ जमा थी। तलवार उठाए और लंबी जिह्वा लटकाए देवी के चित्र दुकानों में टंगे थे। दुकानदार जबामाला चिल्लाते हुए रक्तिम लालिमा वाले गुड़हल के लाल लाल फूलों की माला दिखा रहे थे। तुरही जैसे दिखते इन फूलों की पंखुड़ियों के बीच में लटकती हुई बीज कोश ऐसे प्रतीत होती थी मानो देवी की लंबी जिह्वा बाहर लटक रही हो। खचाखच भरे स्टॉलों पर धूप और आभूषणों का ढेर लगा हुआ था। दूध की मिठाइयाँ, फूल, नारियल और कुमकुम आदि पदार्थ देवी को भेंट चढ़ाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर बेचे जा रहे थे। स्पीकरों पर कानफोड़ू संगीत बज रहा था और तीर्थयात्रियों, दुकानदारों और भिखारियों में रेल पेल मची हुई थी। पंक्तियों में बैठे कोढ़ी विधवा स्त्रियाँ और लूले लंगड़े हाथ फैलाकर यात्रियों से भिक्षा की याचना कर रहे थे। मैं उनके कष्ट को दूर करने के लिए कुछ देना चाहता था, परंतु मेरे पास उन्हें देने के लिए एक दुखभरी मुस्कान और अपनी प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं था। मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का मुक्की और कोलाहल के बीच में सैकड़ों श्रद्धालु काली मंदिर में आ जा रहे थे। वहां दिखने वाले दृश्य के लिए मैं कतई भी तैयार नहीं था। देवी मंदिर के सामने बलि चढ़ाने की रक्त और मांस से अभिरंजित वेदियां बनी थी। जोर से चिल्लाती बिलबिलाती एक काली बकरी को उसकी टांगों से उठाया गया और उसके सिर को एक बड़े से रक्तरंजित छिद्र में घुसा दिया गया। खुली छाती वाले एक पुजारी ने मंत्रोच्चारण करते हुए एक बड़े एवं चौड़े घुमावदार खड्ग का वार किया और खचाक बकरी का सिर धड़ से अलग हो गया। गर्दन से रक्त की धार निकल पड़ी। एक निर्जीव सिर, जिसकी आंखें शून्य में ताक रही थी, एक डरावनी धप्प के साथ धरती पर गिरा। उस बकरी के शरीर को तुरंत निर्धनों के लिए भोजन पकाने हेतु ले जाया गया। उपकाई लेता हुआ मैं बाहर गंगा के तट की ओर भागा। आकुलता से भरा मैं इस घटना को समझने का कठिन यत्न कर रहा था। मैंने सोचा, कितना बड़ा अंतर है यहाँ हो रहे खून खराबे और उन शांतिप्रिय साधुओं में जिनसे मैं पहले मिला था। दोनों एक ही हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इस प्रत्यक्ष विरोधाभास को समझने के लिए मैं मानसिक तौर पर जूझने लगा। मैंने अपने मन में चल रहे इस द्वंद्व को एक बूढ़े साधु से कहा, जो एक कटहल के पेड़ से सट कर बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, वर्षों पूर्व मैं भी ऐसी ही एक काली मंदिर में पुजारी था। बलि की तलवार से मैंने अनेक पशुओं के सिर काटे थे, लेकिन उसके पश्चात निरंतर दुःस्वप्न मेरी नींद भंग करने लगे। क्या आप मुझे उनके विषय में बता सकते हैं? मैंने पूछा। हाँ, मैं जिन बकरियों को मारता था वे मेरे सपनों में आने लगी। पहले वे पीड़ा से चिल्लाती थी, फिर क्रोध भरी आंखों से मुझे घूरते हुए अपने सिंगों से मुझे मारने लगी और फिर अपने दांतों से मेरे मांस को काटने लगी। तब एक विशालकाय पुजारी ने, जिसका शरीर मानव का था और सिर बकरी का, मेरे सिर को वेदी पर पटक दिया और मेरे ही चाकू से मेरा सिर काट डाला। पुस्तक को झटके से बंद करके उस साधु ने पेड़ से टेक लगा ली। मैं और सहन नहीं कर पाया और पुजारी की सेवा छोड़कर एक साधु का जीवन अपना लिया। आंखें फाड़े मैं सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, हर धर्म में लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार शास्त्रों की व्याख्या और रीतियों का पालन करते हैं। जो लोग सत्य का सार ढूंढते हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ सेवा और ईश्वर पर ध्यान। उच्च भौतिक सुख पाने और पापों को कम करने के लिए पुण्य कर्मों का विधान है, लेकिन जो लोग भौतिक वर चाहते हैं उनके लिए अलग अलग अनुष्ठान हैं, जैसे कि वो बलि जो तुमने देखी। वेदों को एक कल्पवृक्ष के समान माना जाता है जिससे हमें जो चाहिए उसे पाने का मार्ग मिल सकता है। काली माता प्रकृति की अधिष्ठात्री एक दयालु देवी है और विभिन्न लोगों द्वारा अलग अलग तरीकों से पूजी जाती है। चाहे उनके मंदिर में लोग कुछ भी करें, लेकिन काली देवी स्वयं शाकाहारी हैं। मैं नदी के प्रवाह को देखने लगा। मैंने सोचा, पश्चिम में समाज की आंखों से दूर पर्दे के पीछे लाखों जानवरों की हत्या होती है, किंतु यहाँ पर जो लोग मांस खाते हैं वे कम से कम ये तो देखते हैं कि उन्हें भोजन प्रदान करने के लिए क्या किया जा रहा है। आज तक मैं ये सोच रहा था कि अनेक पंथों का अध्ययन करके आध्यात्मिकता संबंधी मेरे विचार और विस्तृत होंगे, परंतु इस घटना ने मुझे समझाया कि एक परिपक्व मार्गदर्शक के बिना विभिन्न पंथों में दिखने वाले विरोधाभास मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर देंगे। कलकत्ता की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर घूमते हुए मेरा हृदय अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचकर जोर जोर से धड़कने लगा। सड़क पर हॉर्न बजाती गाड़ियों में एक एक इंच के लिए होड़ लगी थी। गरजते ट्रक जोर से भोंपू बजा रहे थे। सैकड़ों साइकिलों और मोटरसाइकिलों का कोलाहल मचा था। पसीने से लथपथ नंगे पैर चलते मजदूर जोर लगाते हुए रिक्शा पर पूरे पूरे परिवार को ढो रहे थे। हाँफते बैल ठसाठस भरी गाड़ियां खींच रहे थे। कुत्ते, गाय, भैंस और भेड़ बिना किसी के लिए रुके चलते जा रहे थे और उन सब के बीच पैदल चलने वाले धक्का मुक्की कर आगे बढ़ रहे थे। मैं मदर टेरेसा के कॉन्वेंट में पहुंचा। वो एक सादी एक मंजिला इमारत थी जहां एक कैथोलिक सिस्टर ने मुस्कान के साथ मेरा अभिवादन किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में आपका स्वागत है, उसने कहा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? आदरपूर्वक हाथ जोड़कर मैंने निवेदन किया, क्या मुझे मदर टेरेसा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? कृपया मेरे साथ आइए, देखते हैं शायद संभव हो सके। वो मुझे एक साधारण से दिखने वाले एक चर्च में ले गई। ये हमारा पूजा गृह है। मदर टेरेसा और नंस यहीं पर प्रार्थना करती हैं। मैंने घुटने के बल बैठकर अपनी प्रार्थना अर्पित की। जब मैं उठा तो वो मुझे चर्च से बाहर एक गलियारे में ले आई। फिर जब हम मध्यम प्रकाशित एक कमरे के सामने पहुंचे तो उसने कहा, मदर वहां अपने दैनिक कार्य कर रही हैं। मैंने भीतर देखा और पाया कि मदर टेरेसा कालीख लगे एक बड़े बर्तन को अपने पूजनीय हाथों से घिस रही थी। मेरा हृदय पिघल गया। मदर, मेरी मार्गदर्शिका ने कहा, ये श्रीमान रिचर्ड हैं, एक अमरीकी साधु, ये आपसे मिलना चाहते हैं। मदर टेरेसा ने हाथ जोड़कर मेरा अभिवादन किया। आपको प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन क्या मैं पहले अपनी सेवा समाप्त कर लूं? निश्चय ही मदर, मैंने उत्तर दिया। सिस्टर फिर मुझे एक छोटे कमरे में ले आई और एक कुर्सी पर बैठाकर उसने कहा कि मदर बर्तन साफ करके वहां आएंगी। कुछ मिनटों पश्चात मदर टेरेसा कमरे में आई और मुझसे कुछ फुट की दूरी पर रखी एक कुर्सी पर बैठ गईं। भले ही उनका वृद्ध तन झुका हुआ और कमजोर था, मैं उनके कभी न झुकने वाले व्यक्तित्व को महसूस कर सकता था। उनका चेहरा जीवन भर की तपस्या से उपजी झुर्रियों से भरा था, फिर भी उनकी आंखें एक बालिका की मासूमियत लिए चमक रही थी। उनके चारों ओर गतिविधियों की गहमा गहमी थी, फिर भी उनके पास मेरे जैसे तुच्छ जीव के लिए समय था। उनकी कोमल वाणी से अनेक अंतकरण में उपजे शब्द उमट पड़े। विश्व की सबसे बड़ी परेशानी भूख है, पेट की भूख नहीं, हृदय की भूख। संपूर्ण जगत में अमीर गरीब सभी दुखी हैं, वे अकेले हैं प्रेम के भूखे। उनकी कृपा दृष्टि से मेरा हृदय इस प्रकार से खुल गया कि मैं उनके प्रत्येक शब्द को स्वीकार करने लगा। केवल भगवान का प्रेम हृदय की क्षुधा को शांत कर सकता है, अन्य कोई हल नहीं। उन्होंने हाथ झटकाकर अपने कार्य को तुच्छ करार दिया। गरीबों के पेट को भरना कठिन नहीं है, अपितु मानवता के भूखे हृदयों को भगवत प्रेम से भरना एक बड़ी चुनौती है। उस प्रेम को बांटने के लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। ईसा मसीह के मिशन के लिए उनका समर्पण एक महासागर के समान था, और उनका हर हाव भाव उस महासागर की एक लहर के समान। उन्होंने आगे कहा, गरीबी केवल तन पर वस्त्र का अभाव नहीं है, अपितु मानवीय गरिमा तथा शुद्धता के सुंदर गुणों का अभाव है। एक दूसरे के प्रति आदर भावना का अभाव ही गरीबी है। अपने हृदय पर हाथ रखकर उन्होंने श्वास भरा। जब कलकत्ता के निर्धन लोग मेरी बाहों में दम तोड़ते हैं, तो मैं उनकी आंखों में आशा की किरण देखती हूँ। उस किरण को मैं पश्चिम के अनेक धनी वैभवशाली व्यक्तियों की आंखों में भी नहीं पाती। असली धन संपन्नता उन लोगों के हृदय में है जिनके भीतर भगवत प्रेम के प्रति श्रद्धा है। आज संसार को ऐसे लोगों की नितांत आवश्यकता है जो निर्धन हृदयी लोगों में आशा की किरण भर सकें। तभी अन्य लोग कमरे में आ गए। एक अंग्रेज महिला ने मदर से पूछा, आप बर्तन क्यों धोती हैं? क्या यह काम करने के लिए कोई और नहीं है? मदर टेरेसा ने प्रश्नकर्ता की ओर स्नेह से देखा। भगवान और मानवता की सेवा करना एक गौरव है, काम नहीं। भगवान के लिए कोई भी सेवा कर पाना एक आशीर्वाद है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। लेकिन मदर, महिला के पति ने पूछा, आपको यह शक्ति कहाँ से मिलती है? मदर टेरेसा ने अपनी माला ऊपर उठाई, फिर उन्होंने वो कहा जो मैंने अनेक मार्गों के विभिन्न साधुओं को कहते सुना था, मेरी सारी शक्ति भगवान के पवित्र नामों से आती है। फिर वो मेरी ओर मुड़ी, अगर आप विनम्र हैं तो कुछ भी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, न मान न अपमान, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। भगवान हमारे साक्षी हैं। अगर आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है तो कभी भी असफलता से हताश मत होना। उनके शब्द मेरे अंतकरण की गहराई तक बैठते गए। जाने से पहले उस अंग्रेज महिला ने मदर टेरेसा को उनके महान कार्य के लिए धन्यवाद दिया। ये ईश्वर का कार्य है, मदर टेरेसा ने उत्तर दिया, मैं केवल एक तुच्छ साधन मात्र हूँ। फिर वे हमेशा से आज्ञा लेकर बर्तन घिसने के लिए चल दी। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में मैसेडोनिया की एक एल्बिनियन परिवार में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने जीवन को एक नन के रूप में समर्पित कर दिया। शीघ्र ही उन्हें कलकत्ता में एक शिक्षिका और तत्पश्चात सेंट मैरीज विद्यालय की प्राध्यापिका के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन 1948 में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्हें अपने अंतकरण से कलकत्ता की बस्तियों में रहने वाली गरीबों की सेवा करने की पुकार सुनाई दी। 1950 में केवल 12 सहयोगियों के साथ उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। आने वाले वर्षों में उनकी निस्वार्थ सेवा ने हजारों लोगों को उनके ईश्वरीय सेवा कार्य में सहायता करने के लिए आकर्षित किया। मेरे अनुरोध करने पर सिस्टर मुझे बीमार और मरणासन्न व्यक्तियों के आश्रम में ले आईं। उनकी सहायता करने में मैं स्वयं को पूरी तरह से असहाय अनुभव कर रहा था। फिर भी मैंने कुछ साधारण सेवाएं जैसे सफाई, बर्तन उठाना इत्यादि कार्य करके अपना योगदान दिया। शीघ्र ही मदर टेरेसा आ गईं। उनकी उपस्थिति ने पीड़ा और मृत्यु की उदासीनता से भरे कमरे को आशा और उल्लास के प्रकाश से भर दिया। जब उन्होंने रोग से त्रस्त एक महिला का हाथ थामा तो वे कोमलता से मुस्कुराई। उस महिला में सकारात्मक बदलाव नजर आया। उसकी आंखें हर्षोल्लास भरी चमक से खिल उठीं और वो मदर टेरेसा की ओर देखकर मुस्कुराई। इस प्रकार मदर हर एक पलंग के पास गईं। वो इसे ड्यूटी समझकर नहीं अपितु सच्चे प्रेमवश कर रही थी। वहां पर खून की खांसी करता हुआ एक दुर्बल व्यक्ति था जिसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। उसने अपने सिर पर उनके हाथ का स्पर्श अनुभव किया। उसने मदर की ओर ऐसे देखा मानो वे एक देवदूत थीं जो उसके सबसे कठिन समय पर आई थी। सिर झुकाकर वो मुस्कुराया। मदर ने मृदु स्वर में कहा, ईश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ है, कृतज्ञता से उनका स्मरण करो। एक मरणासन्न स्त्री को उसके प्रियजनों ने त्याग दिया था। मदर टेरेसा ने उससे सांत्वना भरे शब्द कहे, अगर तुम वास्तव में ईश्वर से प्रेम करना चाहती हो तो तुम्हें निश्चय ही क्षमा करना सीखना होगा। उस स्त्री के हृदय का भार उतर गया। उधर टेरेसा ईश्वर से प्रेम करने के साथ अन्य लोगों से भी प्रेम करती थीं। अपने नम्र सरल व्यवहार से वे अपने संपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति को आशा और आनंद का चमत्कारी उपहार देती। हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सबके साथ समान प्रेम से बर्ताव किया जाता था। एक बार मदर मेरी ओर मुड़ी और बोली, मुझे इन सभी गरीब लोगों में अपने प्रिय ईसा मसीह दिखाई पड़ते हैं। इनके माध्यम से मेरे प्रभु कृपावश मेरा प्रेम स्वीकार कर रहे हैं। मदर, मैंने उनकी उपस्थिति में शर्माते हुए कहा, ये लोग आपसे ईसा मसीह का प्रेम पाते हैं। मदर टेरेसा खिलकर मुझसे बोली, क्या ये ईश्वर के प्रेम का चमत्कार नहीं है? यहाँ पे सातवां अध्याय समाप्त होता है।